ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਕੀ ਜੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਦੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ। ਸਰਵ ਸੰਤੋ ਕੀ ਜੈ, ਸਰਵ ਭਗਤੋ ਕੀ ਜੈ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ੋ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਕਾਸੀ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਡਾਣੀ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਕਰੋਥਾ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਬਰਵਾਲਾ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੁਆ, ਕਾਲ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਪੀੜਾ ਕਿਤਨੀ ਭੈਂਕਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਡਰ ਬਣਾ ਇਸਕਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣੇ ਸੇ। ਔਰ ਸਤਲੋਕ ਕੇ ਸੁਖ ਕੀ ਚਾਹ ਬਣੀ, ਆਪਕੋ ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਸੱਚਾ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਕੋ ਸਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮ ਇਤਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਇਨਸਾਨੋ ਪਰ ਆਪਨੇ ਕੈਸੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੀ, ਹਮ ਕੈਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਆਪਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਇਸ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਮੇਂ ਆਏ। ਆਪ ਕਿਤਨੇ ਦਇਆਲੂ ਹੋ। ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਦਇਆ ਕਰੀ, ਇਸ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਜਾਖੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਦਇਆ ਕਰੀ, ਇਸੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਔਰ ਉਸ ਸੁੱਖ ਸਥਾਨ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ, ਜੈਸੇ ਕੇਸੋ ਔਰ ਕਬੀਰ ਰੂਪ ਮਜਬ ਮਾਲਿਕ ਦੋਨੋ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਚਰਚਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਮੇ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈ। ਕੇਸੋ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਕਿਉਂ ਉਤਰੇ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਮਲੀਨ, ਇਸੇ ਮਲੀਨ ਲੋਕ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆਪ, ਔਰ ਮੈਂ ਛੋੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਵਾਸ ਐਸੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਛੋੜਿਆ ਆਪ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਗਰ ਆਏ ਹੈ ਜੀਵ ਹਮਾਰੇ ਲਾਲ, ਇਨਕੇ ਲਈ ਆਇਆ ਗੋਤਾ ਮਾਰੂ ਸਰਗੁਣ ਜਾਂ ਪੈਠੂ ਪਾਤਾਲ, ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਢੂੰਡਤਾ ਕਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਦਇਆ ਕਰੀ, ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਬ੍ਰਿਤਾ ਉਸਕਾ ਉਸਕਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਾਲ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇ ਛੁਡਵਾਨੇ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਕਸ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹਮਾਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਧਾਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਆਪ ਕੋ ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਔਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਸੇ ਆਪਕੇ ਅੰਤਕਰਨ ਮੈਂ ਯੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਉਸਕਾ ਧੀਰੇ 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 ਅਸਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਬੱਚੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਸੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋ ਯੁੱਗ। ਅਬ ਆਪਕੋ ਸਰਪੰਗੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਕੇ ਅੰਕੀ ਵਾਣੀ ਸੁਣਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਮਰ ਵਾਣੀ ਸੇ ਅਮਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਯੇ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕੌਨ ਸੀ ਸਾਧਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਹਮ ਕਿਨ ਕੋ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਮਾਨਤੇ ਥੇ, ਵੋ ਕਿਤਨੇ ਸਫਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਂਡਿਤ ਮੁੰਡਿਤ ਭਦਰਾ ਮੋਨੀ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੇ, ਦੋ ਮਰ ਪਾਨ ਠੇ ਸਰੀਏ ਦੋ ਜਕ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇ। ਚੁੰਡਿਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਟਾਧਾਰੀ ਬਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੰਠੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨ ਰੱਖੇ ਹੋ, ਕਾਨ ਕੂਨ ਪੜਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮੂੰਡ ਮੰਡਵਾ ਰੱਖੇ ਹੋ, ਗਲੇ ਮੈਂ ਮਾਲਾਏ ਹੋ, ਰਾਕ ਲਪੇਟ ਰੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਤੀ ਸ਼ਰਕੋਰਾ ਕਚਕੋਲਾ ਕਢਾ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਔਰ ਗੇਰਵੇ ਕੱਪੜੇ ਬਗਮਾ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਰੱਖੇ ਹੋਤੇ, ਕੁਛ ਸੁਰਪੇ ਪੀਵੇ ਔਰ ਠੰਡੇ ਇਸਤਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਪ ਕਰਤੇ, ਠੰਡੇ ਇਸਤਰੀ ਬੋਲਤੇ ਹੋ। ਤੋ ਕਹਿਤੇ ਗਰੀਬ ਚੁੰਡਿਤ ਮੁੰਡਿਤ ਭਦਰਾ ਮੋਨੀ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੇ, कुछ मौन रखते हैं, ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं कि साधु बोलता नहीं, भाई 6 साल से मौन बैठा है, पर संकेतों से काम करे, सारा बात कहीं वो लिख के दे दे, वैसे संकेत कर दे, पानी पीना है मुंह का हाथ लगा दे। तो ये सिर्फ पाखंड है, भक्तिहीन इंसानों के ये कर्म है। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा मोनी मैल ना पावे, धूमर पान ठडे श्री दोजक धक्के खावे। दोजक माने नरक, ये मैल नहीं पावे, सतलोक प्राप्त नहीं कर सकते, ये नरक में धक्के खाएंगे। गरीब योग नहीं यो रोग है, जब लग नाम न चीन, घर घर द्वारे भटकते भेख बिना यकीन। ये योग माने साधना, भक्ति नहीं है, क्यों तो मान बढ़ाई का रोग लगा हुआ है। जब तक सच्चा नाम निज नाम नहीं मिलेगा, सच्ची भक्ति नहीं मिलेगी, ये जन्म मन का रोग यूं का यूं बना रहेगा, और घर घर द्वारे भटकते भेख बिना यकीन। गरीब भेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजे नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। ये भेख लेना होता है किसी विशेष पंथ में, उसकी वेशभूषा ग्रहण कर लेते, दीक्षित माने जाते हैं, जैसे वैष्णो परंपरा के व्यक्ति एक कंठी माला गले में डालते हैं, सफेद बाणा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी पूछ रखते हैं, इनको वैष्णो साधु बोलते हैं। दूसरे कनपाड़े हैं, कान पड़वा लेते हैं, उनमें बाला जैसी मोटी मोटी मुद्रा डालते हैं, बड़ी बड़ी जटा रखाते हैं, सुल्फे पीते हैं, चिमटे रखे हैं। गरीब भेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजे नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। कि ये अलग से कोई वेशभूषा बना के भाई ये आडंबर कर भी लिया, बिना विवेक बिना ज्ञान के इससे कोई लाभ नहीं होगा। तीन काल निपजे नहीं, यानी कदे भी लाभ नहीं होगा, कभी भी नहीं मिटे कर्म रेख, यानी कर्म के दंड पाप कर्म नहीं कटेंगे। गरीब अधय कपाली तपत है, तले सिर ऊपर पैर, दम का खोज न जाने ही, क्या देही सुबर। क्या बताते हैं कि कोई ऊपर ने पैर और नीचे सिर करके तपता है, कोई किसी प्रकार से कठिन साधना करता है, कि तुम श्वास के सिमरण का, दम का खोज न जाने ही, क्या देही सुबैर। आप ठीक से भक्ति नहीं जानते, जो श्वास का सिमरण है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, फिर इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है, इसकी दुरुक्ति कर रखी, इसको इतना कष्ट दे रहे हो। गरीब या देही सोंगी नहीं, महंगी रत्नों मोल, जय जाने तो राम जप, नहीं कुल कपाट न खोल। या देही मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है, युगों युगों अच्छे पुण्यों के कारण, धर्म भक्ति करने के कारण मानव शरीर प्राप्त होता है, ये बहुत कीमती है, इसको ऐसे बकवादो मत को, पर तो साधना नहीं करते, करते हैं तो ये शास्त्र विरुद्ध करते हो, ये सब गलत बताई है। गरीब पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, बस्ती तो जो न गाम, बन बस्ती में एक सा जाके हृदय राम। पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा की सच्ची भक्ति अपने घर पर करो, कहीं भी करो, वो सच्ची भक्ति होनी चाहिए। गरीब सत पुरुष निर्गुण कला, सरगुण कल्प विनोद, ओहम सोहम से भिन्न अक्सर को सोहोद। परमात्मा कबीर जी की भक्ति करो, और ओम सोहम तो आपको बता ही रखा, इससे भी अलग एक मंत्र है, उस मंत्र को विशेष दान से जाप करो। गिरिबिना साड साडू नहीं सुनो सियानी लोए, सारा बरस बादुआ कारद सिद्ध ने होए। जैसे समय पर बारिश होती है तो उससे फसल अच्छी होती है, बगैर किसी समय के बारिश होती है तो उससे कोई लाभ नहीं होता। गरीब साध नदी और मेघ जल कहीं कहीं है मौज, निंदत पापी मारिए जिन घर दौड़े फौज। गरीब दैत दल दरमल असुर दल आसगे, मंडी मसाणो निसंक फिरे, जीवे जब लग जोखिम नहीं मरे जब निसंक मरे। यानी सच्ची भक्ति परमात्मा कबीर जी की सत साधना पूरे सतगुरु से लेकर, जो साधना करता है भक्त भक्तमती बच्चे, वो कहते हैं मंडी मसाणो, शमशान घाटों पर मंडियों पर जो लोग जहाँ पूजा बकवाद करते हैं और राक्षसों के झुंड ये भूत प्रेत घूमते फिरते हैं, कि इन मकी तनिसंग फिरो निर्भय होकर घूमो, जीव जब लग जोखिम नहीं और मरो जब निसंक मरो, कि परवाह ना करना। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा कबीर जी इतने सक्षम है, अपने भगत को इतने जीवन रहेगा, इतने कोई टेंशन नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, मरे जब निर्भय होकर श्री छोड़ देना, आपके लिए विमान तैयार मिलेगा, टेंशन ना लेना। गरीब चंद्र सूर की आयु लग जे जीव का रहे शरीर, सतगुर से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। चंद्र और सूर्य, चांद और सूरज की आयु लग यदि जीव का शरीर रहे और सच्ची भक्ति पूरे सतगुरु से प्राप्त नहीं हुई, तो कितनी साधना करता दिखता अंत में कीड़ा मकोड़ा, कीर का कीर। गरीब एक पलक जुग जीवना जे सतगुरु भेटा होए, रोम रोम तारी लगे सुरती सुहंगम पोए। के एक पलक यानी कुछ समय के लिए भी सच्चे सतगुरु की आपने संगत सत्संग सुन लिया, तो धीरे धीरे आत्मा उसको कैच करती चली जाती है, रुचि बढ़ती चली जाती है, और फिर अंत में दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराता है। गरीब डेरे डंडे खुसरो हो, खुसरे लहन मोक्ष, द्रु प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। जैसे गलत धारणाएं पैदा कर रखी है कि मोक्ष तो उसको प्राप्त होगा जो घर छोड़ जाएगा, जंगल में कठिन तपस्या करेगा, परिवार का मोह त्याग देगा और ब्रह्मचारी जीवन जिएगा, तो यहां गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं कि डेरे डंडे खुसर हो, ये खुसरे लहे ना मोक्ष, अपने घर पर रहो आराम से। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करने मात्र से और जंगल में बैठ जाने से मोक्ष होता है तो ये खुसरे इजड़े तो सारे पार हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मानते हो द्रु पार हो गया, आप मानते हो प्रहलाद पार हो गया। द्रु 5 साल की उम्र में भक्ति के लिए निकला, कठिन साधना की, उनका विश्वास देखकर भगवान ने उनको दर्शन दिए। द्रु को राज की चाह थी और कुछ नहीं मांगा था, क्योंकि कारण क्या था, उत्तानपात राजा था और द्रु की माँ उसकी पत्नी थी यानी राजा की रानी थी, उसको कोई संतान नहीं हुई, वृद्धावस्था होगी थी, आधे से ज्यादा उम्र होगी थी, तो उसकी द्रु की माँ सुनीति थी। सुनीति ने अपने घर जाके अपने माता पिता से अपनी छोटी बहन सती की राजा के लिए मांगा। कारण यह था कि एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने बताया उस सुनीति को, ध्रु की माँ को, कि राजा दूसरी शादी करे, उसके बाद आपको पुत्र पहले होगा, उसको बाद में होगा। वैसे संतान नहीं होगी, यह संयोग है। रानी ने राजा को मनाया, अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करी, आखिर में उस लड़की छोटी बहन को राजा के शादी करवा दी। अब सुरीति ने ये ईर्ष्या होगी कि मेरी बहन ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, एक बूढ़े का ब्याह करवा दिया मेरा, मैं किसी राजा के शादी होती स्वतंत्र रहती। जब विवाह करके राजा लेके आ रहा था अपनी सुरीति सेकंड पत्नी को, राज की सीमा पे जाके रथ रुकवा लिया और बोली, वो सुरीति मेरी कंडीशन है, ये मानोगे तो मैं आगे कदम रखूंगी, नहीं मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। राजा ने पूछा, क्या बात है? कि जो मेरी बहन है उसको निकाला दे दे, उसको अलग रखेगा, उसको खाने का भी माप तोल के देना होगा, दुहागन करेगा, इसमें काफी कंडीशन होती दुहागन के लिए, अलग से मकान बनाया जाएगा। राजा ने मान लिया। और दूसरे ये होगा कि जो मेरा पुत्र होगा उसको राज मिले, मेरी बहन के पुत्र को राज न मिले। इस तरह की शर्त सारी राजा ने मान ली। आगे फिर पहले ध्रु हुआ, ध्रु जब उत्पन्न हुआ उसमें माँ वैराग्य में थी, घर से अलग दूसरी जगह रखा हुआ था, और ये बहुत लंबी कहानी है, इतना यहाँ नहीं बता पाऊंगा। तो उत्तम को राज दे दिया, ध्रु को धिक्कार दिया, भगा दिया उसकी माँ ने। तो ये लंबी कहानी है, या इतना समय नहीं मैं आपको बता पाऊंगा। तो ध्रु परमात्मा से राज लेने के लिए माँ से पूछा, ध्रु ने, माँ उत्तम को राज किसने दिया? बेटा भगवान देता है, परमात्मा ने दिया, उसके भाग में लिख दिया, तेरे भाग में नहीं है। तो ध्रु बोला, मैं भगवान से राज लूंगा, यूं कहकर छोड़ कर चल पड़ा। 6 महीने तक एक पैर पे खड़ा होकर, या जैसे भी तपस्या खूब की, जाप किया, पिछले संस्कार से होता ही है, वैसे तब तो दुनिया करती है, पिछले युगों का बहुत संस्कार भक्ति करते करते आए हुए थे, वो काफी संग्रहित थी, उसके प्रति फर्म मालिक ने उनको ऐसा कुछ कर दिया। परमात्मा प्रकट हुए, बोले, भाई क्या मांगता है बोलो, मुझे राज चाहिए भगवान, मुझे राज दो। ठीक है, राज दे दिया कि पहले तो यहाँ कर, फिर तुझे ऊपर अलग से नगरी बना के दूंगा द्वीप। ध्रुव वापस आ गया, उधर से ये दोनों बड़े हो गए, उत्तम भी और ध्रुव भी, उत्तम का विवाह भी हो गया, ध्रुव का विवाह भी हो गया। उत्तम मारा गया एक राजा से युद्ध होने से, तो राज भी ध्रुव को मिल गया, और उत्तम वाली जो पत्नी थी वो भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले, वे विचार परमात्मा को कति पसंद नहीं, पर शादी विवाह कभी मना नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादी शुदा, और इनके उपासक ने होकर ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अच्छी बात है, बकवाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा बनाना अच्छी बात नहीं। गरीब डेरे डांडे खुश रहो, खुश रहे लेना मोक्ष, ध्रु पर लाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। जैसे ध्रु ने शादी कराई, ध्रु की भी संतान हुई, और आपके तो ये पार हुआ, तो ये डेरे में था, घर में था, गृहस्थी में था, तो भी पार हुआ। कितना पार हुआ? वो पार होना अलग अलग स्टेजेज है, एक तो स्वर्ग तक पहुंच गया, पार हो गया, ये स्वर्ग तक पहुंचने को पार मानते थे। और प्रहलाद भगत की 10 साल की उम्र में परमात्मा मिले, नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की, उसके बाप राक्षस को मारा, प्रहलाद को राज्य दिया और शादी कराई प्रहलाद ने बड़ा होकर के। उसके एक पुत्र हुआ बैलोचन, और बैलोचन का पुत्र हुआ राजा बलि, यानी प्रहलाद का पोता राजा बलि था, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ की थी, और भगवान बावना रूप धारण करके उसकी सौमी यज्ञ को खंड कराने के लिए गए थे। तो कहने का भाव ये है, गरीबदास जी कहते डेरे डांडे खुसर हो खुसरे लेना मोक्ष द्रुपर लाद उधर गए, इनका उद्धार हो गया। कितना हो गया वो उस भक्ति पर निर्भर करता है। तो इस गृहस्थि में क्या दोष है? गरीब ज्ञानी को सतगुरु मैंने खोजी देना ताड़, सिर पर सत कबीर है उड़ी भ्रम की बाढ़। हमारी ये भ्रम की बाढ़ हमारी सब शंकाएं समाप्त कर दी कबीर भगवान के अमृत ज्ञान। कबीर और ज्ञान सब ज्ञान ली, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। गरीब दत्ता जी आगो मेले दक्षिण बीच दयाल, सूखा खोट हरा हुआ ऐसे दीन दयाल। दत्ता जी आपको मिले दक्षिण बीच दयाल, सूखा खूंट हरा हुआ ऐसे दीन दयाल। बच्चों, संत गरीबदास जी ने ये वाणियां कैप्सूल रूप में बना रखी है, जैसे पुड़िया होती है। इस एक पंक्ति में बहुत बड़ी कथा इसके अंदर भर रखी है, ये सुनाता हूं। एक दत्ता तथा जिया नाम के दो ब्राह्मण भाई थे, इनको तत्वा जीवा भी कहते हैं। ये अपनी देसी भाषा में गरीबदास जी ने दत्ता जिया का है। ये गुजरात स्टेट के अंदर एक भरूच शहर है, भरूच समुद्र के किनारे पर, और उससे 12 किलोमीटर दूर एक मंगलेश्वर गांव है। हम खुद देख कर आए थे इसको, उस स्थान को, कई भगत थे मेरे साथ। तो मंगलेश्वर गांव के पास एक शुक्ल तीर्थ नाम का गांव होया करता था, जिसमें जिया और दत्ता ये दो ब्राह्मण भाई भी रहते थे। वो सारा ब्राह्मणों का ही गांव था। वो आसपास गांव में जाके पंडिताई किया करते थे। दत्ता और जिया बहुत ही परमात्मा के चाहने वाले थे। वो सत्संग सुनने जाया करते थे, जहां भी किसी साधु संत का सत्संग होता था तो सभी ये कहते थे भाई मोक्ष के लिए पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता होती है, गुरु बिन मोक्ष नहीं होगा, गुरु बिन सच्चा ज्ञान भी नहीं होगा। जहां भी जाते थे वो मंडलेश्वर प्रवक्ता एक ही बात बताते थे। तो जीवा और दत्ता ने दोनों भाइयों ने विचार किया कि भी जहां भी हम सत्संग जिसका सुनते हैं वो ही हमें तो बहुत पूर्ण गुरु लगे, जिसके विचार सुनते हैं वो उससे भी अच्छा लगता है, और पूरे गुरु बिना बात नहीं बने, मोक्ष नहीं हो। ये तो असंग जन्म हमने जन्म ते और मृत्यु को होगे। जैसे परमात्मा कबीर जी क्या करते हैं, किसी भी रूप में आकर और कहीं जैसे मेले मेले भरा करते तीर्थ तीर्थों पर, वहां चले जाते थे, वहां खड़े होकर शब्द सुनाने लग जाते और 10-20-50 व्यक्ति भगवान के चाहने वाले उनकी बातें सुना करते थे। तो जीवा और दत्ता को किसी स्थान पर परमात्मा उन्हीं के लिए जाते हैं क्योंकि वे भटक रहे हैं भगवान के। ये बातें बताई कि पूर्ण सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान हो, और तब मालिक का राह मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। असंग जन्म पर मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, इस तरह की जबरदस्त बातें बताई। तो उनसे वो प्रेरित हुए, उनको नहीं पता था ये कौन है, उन्हें तो एक भगत माना, गीत गा शब्द शब्द सुनाने वाला। फिर वो साधु संतों की तलाश में चल पड़े, जहां भी जावे एक से एक बड़ी लतीफेदार प्रवचन करें, बड़ी बड़ी कथा सुनाएं, संस्कृत की भाषा में जबरदस्त प्रवचन करें। आखिर में सोचा भी एक हम कैसे निर्णय करें, यो संत पूरा हरियो नहीं, हम किसी को पूरा संत मानकर उसके आश्रित हो जाओ, अंत में उस पता चले उस पूरा नहीं मनुष्य जीवन तक गया ही, यू बार बार नहीं मिलेगा। आखिर में उन्होंने एक फैसला कर लिया कि हम एक बड़के पेड़ की सूखी टहनी लगाएंगे, गमला बना के धरती में गड्ढा खोद के जैसे पौधा लगाया, और जिस संत के चरणामृत से ये हरी होगी हम उसको गुरु बनावाएंगे। उन्होंने सब मंडलेश्वरों जहां भी कोई चर्चित संत था वहां गए, बेचारे दुख सुख पाकर पैदल चल लगे, उनके चरण धोए, महाराज चरणामृत देते कौन मना करे चरणामृत को लाव और डाल, कोई कुछ नहीं हुआ क्योंकि आखिर में उन्होंने कहा है परमात्मा धरती पे संत नहीं है, और संत नहीं है तो हमारा मोक्ष नहीं, इसलिए हे परमात्मा हमारा को मानुष जीवन शेष बचा है इसको खत्म कर दो, हम दोनों को मार दो, कभी पृथ्वी पर संत हो दुब जन्म देना, यूं कहकर खूब फूट फूट कर रोने लगे। काफी देर रोज ही टेंशन में रहने लग गए, खाना पीना लगभग छूट गया, कैसे तो मर जाना अच्छा है, ये तो पशु जैसा जीवन बहुत बार जी लिए। तो कबीर साहब डर रहे कम सुना गए थे, कहीं कहीं इकट्ठे होकर खड़े हो जाते थे, जाते थे भटकते थे वहां, मालिक भी किसी न किसी रूप में चले जाते थे, उनके यह प्रेरणा भर दी थी, बाकी मंडले सुना के बस में या भी ना थे किसी प्रेरणा भर दे इतना वैराग डाल दे। एक दिन परमात्मा पहुंचे उस शुक्ल तीर्थ गांव में, गली में जा रहे थे तो दत्ता बाहर निकला और बोला जीवा देख एक संत घूम रहा गली में, कहो तो बुला लो। जिया बोला रहे संत इसे इसे मंडलेश्वर देख लिए कि सड़क छाप पर के पाओगे, क्यों जी दुखी करे और कई दिन रोना पड़ेगा, कुछ ना इनका पल्ला। दत्ता बोला मेरा दिशा दिल करे है बुला लो इन्हें, एक भाई साधु सा दिखे है चेहरे से बहुत अच्छा लगया, देखते ही आत्मा खुश हुई। जिया बोला बुला लो मैं क्यों नाटो, वो तो बुला लिया, एक बैठने का मुड्ढा सा दे दिया स्टूल सा, बैठो महाराज बैठो। जीवा ला परात निकाल के थाली, महाराज के चरण दो कह और जा, जिया उसमें डाल दे पौध्या में डाल, अगर संतान के चरणा मृत इधर उधर में डालिए कित गमले में डाल दे। जीवन डालन लाग रहा है, डालते डालते उसको पोपल टूट आई वट वर्क्स की टहनिक है। जिया बोला दत्ता आइए आइए क्या होगा, दोनों देख कर सुन हो गए, आते पैर पकड़ लिए, हे परमात्मा हमने तो ये सोच लिया था धरती पर संत नहीं है। कबीर साहब बोले जिस दिन पृथ्वी पर संत नहीं होगा आग लग जाएगी इस पर, या कोई नहीं बचेगा, काल फूक देगा इस पृथ्वी को। हे मालिक आप पहले क्यों ना आए, हम तो बहुत भटक लिए थे, हम तो सोच लिया था धरती में कोई संत नहीं, और हम तो मरा हो भूखे पैसे रह के कति ना जीण के रहे थे ना मरण के। तो परमात्मा से काफी लिपट के सीने के लग के कभी चरणों में गिर के और सो सो शुक्र बनाओ, हे परमात्मा पहले क्यों नहीं आए, हम तो मेरे लिए कति सारे गुम लिए नीले सुरो के, किसी के पास कुछ नहीं पाए। परमात्मा बोले बच्चों ये संत की पहचान नहीं थी जो तुम कर रहे थे, ये तो सिद्ध भी कर दे थोड़ी बहुत संत करदा दूर कर देते हैं, हथेड़ी में गेहूं हरे कर देते हैं, ये कोई पहचान थोड़ी तुमने, ये क्या तरीका अपनाया था। संत की पहचान ज्ञान से होती है, समाधान से होती है, और मैं पहले भी आ सकता था लेकिन आपका कति विश्वास नहीं रहो मेरे में, कति विश्वास नहीं बनना था क्योंकि मैं तो आपके हिसाब लग रहा हूं जैसे आंगड़िया फिरनिया मांगड़िया खानिया। और वो मंडलेश्वर जिसके हजारों बड़े बड़े सेठ साहूकार शिष्य, तुमने सोचो कि और भी कोई होगा जरूर, इसने सड़क साप ने के छोड़ उनके पास जाते, वहां कुछ मिलना था नहीं तो मेरे तो विचले जाते। गुरु के प्रति नाम दीक्षा लेने के बाद स्वप्न में भी न्याणा चाहिए आन को नकली संत। लेकिन कबीर साहब ये भी कहते हैं कि जब ल गुरु मिला नहीं साचा, तब ल गुरु करो दस पाचा। पूरा गुरु ना मिला इतने से एक सौ छोड़ दो, दस बीस कितने छोड़ने पड़ो त्याग दो। लेकिन मेरे प्रति तुम्हारी अविश्वास हो जाता तो मेरे से खत्म हो जाते आप, इसलिए मैं लास्ट में आया हूं, तुम्हारी सारी फटक निकल ली। तुम कभी थक कर और छक कर बैठ चुके थे कि कोई कितना कुछ नहीं किसी के पास, ये सिद्धि भी कोई ना इनके पास, ये बनने इनकी फेल कर दी ना, कोई इनको चमत्कार भी कर दे उतर लिए, इसलिए फेल करी कि ये पहचान संत की नहीं होती। लेकिन तुम मेरे पिछले संस्कार ही थे, इसलिए मैं काल के मुंह में तुम्हें नहीं जाने दे सकता। एक भक्ति करो। अब उन्होंने सब वो बकवाद पूजाएं जो यजमान बना रखे थे वो छोड़ दिए, कोई किसी के जाड़े जुड़े लाना या किसी के मृत्यु पे जन्म होने पे किसी का नहीं जाना छोड़ दिया, सत साधना करने लगे, जमीन थी अपना खेती करें और परमात्मा की कृपा से बढ़िया गुजारा हो गया। ब्राह्मणों को इस बात की ईर्ष्या होगी कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया और हमारी सब क्रियाएं छोड़ दी, कुल को जाति से निकाल दिया। फिर क्या होता है, चलो निकाल ले रो जाति तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो अपना कमा के खाना था और भक्ति करनी थी, मोक्ष पाना था। एक का लड़का था एक का लड़की थी, दोनों भाइया जवान हुए, ब्राह्मणों को यहां शादी के लिए जावे रिश्ते के लिए लड़की का, सब मना कर दिए, तुम तो जाति से बहिष्कृत हो, हम तुम्हारी कन्या का विवाह नहीं लेंगे, रिश्ता नहीं लेंगे। दोनों टेंशन में आ गए। कबीर साहब बोले ऐसे करो, तुम ये अफवाह फैला दो कि भाई जीवा का लड़का और दत्ता के लड़के की शादी कराएंगे उस दिन, और वो तो कोई हमारे बच्चे ने उठता नहीं, हमने तो आपस में ब्याह करना पड़ेगा इनका। ये सारा सुरसराट फैला दिया, पंडितों की पंचायत हुई, उन्होंने कहा भाई विचार किया कि ये तने कम में होंगे सो होंगे, फिर बच्चों का के दोष है, बच्चा नाम ब्याह होंगे भाई, ये तो जुलम होगा, कति दिन भ्रष्ट हो जाएगा, पान भाई का ब्याह कदे हुआ करे, अरे कति दुनिया थूपकेगी हमारे गांव के गांव को। पंचायत होने के बाद 10-20 आदमी आए, इन्हू बोले भाई सुन दो, यू कदम नहीं उठाओगे तुम, यह बेटी मारी है बेटा मारा है, हम इनका रिश्ता करें। दोनों का रिश्ता हो गया। परमात्मा बोले देखा बेटा मांग लेगी ना, फटकड़ी रंग भी आया चोखा हो गया, ब्याह भी हो गया और सारे काम हो गए, टेंशन ना लो। तो बच्चों मुश्किल से आसान करेगा आन के, एक केसो बंजारा उतरा जान के। तो कहते ऐसे कोई दिक्कत आओगी तो मालिक सो समाधान निकालेगा, पर निकाल लेगा तब जब आप उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे। अंग्रिम आसन अचल कबीर का, सबका सतगुरु एक, ब्रह्मांड इक्कीसो समझ ले या धूमे के सिरेख, कि 21 ब्रह्मांड को देख ले, ये धूमे के सिरेख यानी कति नासवान, बिल्कुल अस्थाई, इनका कोई अस्तित्व नहीं। अब साइंस ने ये सिद्ध कर दिया, साइंटिस्टों ने, खगोल भगोल के जानने वालों ने, पृथ्वी भी घूमती है, सारे लोग घूमते हैं, यहां तक भी सिद्ध हो गया कि सूर्य भी चला है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के साथ चलने से इसका पता नहीं लग रहा, ये घूमते हैं। कहने का भाव ये, सारे ऐसे लटके हुए हैं जैसे पतंग। गरीबदास जी ने कहा सर्वलोक ऐसे हैं जैसे पतंग आकाश में लटके पड़े हैं, और जिस दिन भी इसका अंत होगा सारे एक दूसरे से टकरा टकरा कर आग लग जाएगी, या कोई ठीक ठिकाना नहीं है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बताया अपने भगवान के बारे में, गरीब आसन अचल कबीर का सबका सतगुरु एक, ब्रह्मंड इक्कीसों समझ ले या धूमे के सिरेख। इक्कीस ब्रह्मांड सब नासवान, धूमे के साथ धूमसी उठी है, नथिंग एल्स। बच्चों इस शरीर में देखो अपने ना, कितना सुंदर लगे हर, कितना अच्छा कितना प्यारा, हर कभी खूब एक्सरसाइज इसमें करा, कुश्ती इसमें करा, छलांग इसमें लगा ला, या मालिक की कृपा से सारा कुछ हो रहा है, उसने इसमें शक्ति दे रखी है। और जरा सी उग चुग हो जा हाथ ना उठा आदमी का, अदरंग मार जगो वो पहलवान। तो परमात्मा कहते हैं इस कच्चे शरीर में इतना मत भूल है, भगवान को ना भूल है, ये लोक अच्छा नहीं है, या कोई भी ठीक नहीं है, या जो दिखाई देता है सब नाशवान है। गरीबदास कहते दृष्टि प्रेसो फना है धर्म भर कैलाश, या कृत्रिमवादी झूठ है बनावटी, ये सारा बनावटी है। सुरत समो श्वास कृत्रिमवादी, ये बनावटी लोक है सारे। जैसे करने नो दीदार मेर में प्यारा है एक शब्द है परमात्मा कबीर साहब का, उसमें बताया है कि आदि माया की नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड रचाई, ताका प्रतिबिंब डारे है। सतलोक की जो व्यवस्था ऐसी ही है, उसमें भी बहुत द्वीप है, और ऐसे ही मानव स्त्री पुरुष शरीर है, लेकिन वो अमर है, ये नाशवान है। ये समझो मिट्टी के और वो सोने के, वहां का जो शरीर है वो अमर है, वहां के देवता रूप हम सब देव देवी रूप हो जाते हैं वहां पर, लेकिन इस भक्ति के शक्ति से होते हैं। तो उसकी नकल कर रखे या टोटली नकल, ये शरीर कितना सुंदर लगा आपका, मृत्यु के बाद इसको फूकते है ना, 1 किलो राख हो जाती है। और ये देखो क्या था, ये बच्चों यहाँ का सब सब व्यवस्था कति नकली और नाशवान है, चारों वेदों का ज्ञान नकली, जिनको हम भगवान मानते थे वो भगवान नकली, हमारे को कति मूर्ख बनाकर रख रखे, हमारी ऐसी स्थिति थी आज के दिन, आप इसने मानो चाहे ना मानियो, 100 की 100 साक्षी, तुम्हारे बस की बात नहीं, ये याद तो रखनी पड़ेगी आपने, आपके बस का भी नहीं है कि इसका मन हटा लो। इसके मन हटाने की विधि हमारे पास है, इस ज्ञान को जरूर सुनते रहो, 100 काम छोड़ कर सुनो जब तक दाता ने रजा कर रखिए, ये आपको अंदर से मांज देगा आत्मा नकति, आत्मा को इतनी प्रबल कर देगा ना कति अटक कर खड़ी हो जाएगी इस मन के साथ, एक दिन इसका डट का मुकाबला करेगी, तजब हाथ खड़े कर दे है या मंडरा देश रहे, नो हो जाएगा काम छोड़ देगा, और नहीं नो हो जाएगा नुकसान हो जाएगा। इस ज्ञान से इतनी मजबूत हो जाए कि होने दे दो होगा, और मरे गए तो फिर यू काम लग के चट पाएंगे, ज्ञान बिना बात नहीं बना करती। गोरक्ष ज्ञानी गणे दुनिया ज्ञान बताती फिर है, और बहुत सी छोटी छोटी बातों से प्रसिद्धि पता नहीं कौन पाले हैं, कोई कहते बड़ा बाल ब्रह्मचारी है उसी से उसकी महिमा होगी। गोरख से ज्ञानी गणेश सुखदेव जति जिहान और सीता सी वो बारी संत दूर स्थान, इस ज्ञान को सुनते रहो, और फिर यह भक्ति जो दे रखी ये आपकी आत्मा को इतना प्रबल कर देंगी, ताकतवर बना देंगी, रेसलर जो वक्त आओ गए यहां से जाने का, इस मन में पटक देगी ठाक है, और सब मोह ममता से मन एकदम हट जाएगा, पट जाएगा, हटाए नहीं हटता इस ज्ञान से और भक्ति की ताकत से, तब पीछा छूटेगा आपका, तेरे बात बनाए इस काम नहीं बनेगा, या सब को झूठा जैसे व्यापारी लोग क्या करते हैं, भैंस का काट लो, मर जा बच्चा, उसकी खाल उतरवा के उसमें तूड़ा भरवा दिया करें ना, उसका मुंह होता है पुछड़ पुछड़ और बाल बूल ऐसे ही होते हैं, और भैंस के सामने रख दे, वो उसी का अपना बच्चा मान लेती है, उसको चाटती है, लाड करती है, उसको लेके टांग के रस्सी में चलते हैं वो, उसके पीछे पीछे रहा 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 करती भागती रहती, इतना दिमाग है उसके अंदर। आज अपने अंदर इतना दिमाग छोड़ रखा काल ने, जैसे क्या कोई इंजीनियर बना रहो चाहे साइंटिस्ट बना बैठा रहो, और कितना है कुछ बातें बनाने वाला एजुकेटेड समझ ले, क्या है ये बच्चे, हार्ड चाम मांस के लो चढ़े ऊपर चाम लपेट रहा, क्या क्या ये शरीर है, और इसमें इतना मोह बढ़ा दिया, हमारे बस का नहीं, हो ही नहीं सकता। वो भैंस ने कुछ समझावा कि ये ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस ज्ञान ने सुनते रहो, आपको भी और इस सारे के सारे परिवार को भी परमात्मा वहां ले आओगा, धीरे 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 आप पर रंग कट जाएगी, किसा शरीर हो किसा भी हो। तो ये शरीर जो है ना, परमात्मा की कृपा से आपको एक दिन एहसास हो जाएगा कि यहां से तो जाना पड़ेगा, और बच्चों ने भी दीक्षा ले ली, सत्य राह पकड़ गई, क्योंकि हमारा लाइन पाना कठिन था, बच्चों का बहुत आसान हो गया, तो माता पिता से ही राह पर चल रही है, लग जाएंगे कि ये तो जन्म से ही इस मार्ग पर चलने, इनकी तो मुक्ति गारंटीड है, और है आपकी भी, आप डर रहे हो कि संसार की व्यवस्था से पूरी तरह परिचित हो जाओ। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पेंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। गरीबदास जी जब ये बाणी लिखवाया करते, ऐसे बोल बोल के लिखवाया करते जैसे दास बोल रहे हैं, एक तो इसमें लिखने वाले को टाइम मिल जाता, और उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, देखिए किसे मूर्ख बना रखे, आप पर काल ने जुलम कर रखा है, परमात्मा के बच्चों के साथ। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पेंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सद्गुण विष्णु कहावेरी, चौथे पद का वेद निरा, कोई बिरला साधु पावे। बच्चों कितना क्लियर ज्ञान, ये सूक्ष्म वेद है, वेद जैसे मार्कंडेय पुराण में आपको दिखाया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव, ये तीन प्रधान शक्ति हैं काल की, और यही तीन गुण हैं, यही तीन देवता है। कबीर साहब ने सूक्ष्म वेद में कहा है, गुण तीनों की भक्ति में भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बना कैसे उतरो पार। तीन गुणों का मतलब तीन देव की जो करते भक्ति, उनके कबूल ना हो मुक्ति। बता सीधी इस बात ने कोई कहर को पर विश्वास करता अपने, अब तो इतने प्रमाण दर दिए ठाक है, गुंजाइश नहीं छोड़ी मन को कि यो बकवाद कर दे झूठ से, या आपकी किस्मत जोर करेगी कि आपने इसको ध्यान से सुन लिया समझ में आ गया। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, स्पष्ट कर दिया गरीबदास, और चौथे पद का इनका पिता चौथा, इन अपने पिता का भी नहीं पता आज तक, क्या माया बुका दे है इन्हें, इसने उसको धमका रखा कि मेरा भेद नहीं दे देगी, या इसके वश पड़गी तो क्या करे बेचारी, ऐसे औरत को ऐसे दबा कर रखा जाता, पुरुष प्रधान है आपने इसी कारण से। तो चौथा इनका पिता ज्योत निरंजन है, और कबीर साहब कहते हैं चार छोड़ है, और पांचवें को दावा कह कबीर सो मुक्ति पावे हम पर आवे। यजु है श्याम अथर्व, चारो वेद चत भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहिब का, सोहन सा सत संगी रे। यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 10 में कहा है, कोई तो परमात्मा को साकार अवतार लेकर राम कृष्ण के रूप में मानता है, और कोई निराकार कहता हो पृथ्वी पर आता है कोई नहीं। परमात्मा साकार है या निराकार है वो तत्वदर्शी संत बताते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में यही कहा है कि तत्व ज्ञान को उन तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करो, तब वो तत्वदर्शी संत में उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यो ज्ञान आता कहाँ से है? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया, सचिदानंद गण ब्रह्म, ब्रह्म ने मुखे सचिदानंद गण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से जो वाणी बोलता है उसमें यो पूर्ण ज्ञान होता है, और उस ज्ञान से मोक्ष होगा। वो ज्ञान कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। इससे सिद्ध है न वेद में वो ज्ञान न वो गीता में, वो गए चित भंगी, जबकि तो ढूंढा उसने, भ्रमित ज्ञान है इनके अंदर, इनकम्प्लीट ज्ञान है। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बाच साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। बच्चों आप वो सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, पांच रहे हो, आप वास्तव में सत्संगी हो। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवेरी, अकेलोक का वेद न जाने, फिर चार वेद के गावे। जब तुझे ऊपर के अकेलोकों का ज्ञान नहीं, अकेलोक वो चारों अमर लोकों को अकेलोक भी कहते हैं, और लास्ट वाले को नामी और अकेलोक भी कहते हैं ऊपर वाले। अकेकार तो होता जिसने आज तक किसी ने ना बताया हो ना कहा हो उसकी जानकारी, कि ऊपर का ज्ञान तुम्हें है नहीं। इन चार वेदों ने कितना है पढ़ लो, कितने कंठस्थ याद कर लो, कितना इनमें इनके अनुसार साधना कर लो, मोक्ष नहीं हो सकता। बच्चों कमाल की बात देख लो, ये वेद ऋषि पट का जखमार कैसे ले गए, किससे समझ में आए। कबीर साहब कहते गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहेगा। चारों वेदों में कितने भी और मंत्र नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 15 में एक ओम नाम है, स्पष्ट लिखा उसमें, ओम कर तू समर किलवे समर कर तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते करो, विशेष कर्तव्य समझ का मनुष्य जीवन का और कसक के साथ, नथिंग एल्स। ऐसे गीता चारों वेदों का सारांश है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण मां मनुष्य ये प्रयाति तदन देह सहयाति परमाम गति। मूल ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका एक अक्षर का अंतिम सांस तक इसकी जो भक्ति करता है इससे प्राप्त होने वाली मुक्ति प्राप्त करता है ब्रह्म से। श्री देवी महापुराण के अंदर 6 सेकंड में हिमालय राजा को देवी फाइनल कर देती है कि राजा तू और सब बात छोड़ दे, मुक्ति चाहता है तो मेरी साधना ही भूल जा, तो ब्रह्म की भक्ति कर, उसका ओम नाम है, वो ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता है, तेरा कल्याण वहां चला जाएगा। गीता जाए 8 श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु सदा रहेगी। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवेरी, अकेलोक का वेद न जाने, चार वेद के गावे। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। आवे जावे सो हंसा कही है, परम हंस नहीं आया रे। पांच तत्व तीन गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परम हंस परवाना रे। सतगुरु मंदी भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। वो परम पद, वो परम स्थान, वो सतलोक है। दादानी के बाद लौट कर गए अगम दीप अमरापुर को, जा हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। अगम दीप अमरापुर को, अमरपुर अमरपुरी सतलोक अविनाशी परम धाम सनातन परम धाम। जा हिल मिल हंसा खेल रे, वहां मौज मस्ती में रहते भक्त सारे बच्चे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। वो लोक, वो देश बहुत दुर्लभ है, लेकिन सुलभ है सच्चे सतमुख से। तो बच्चों, आपके ऊपर दाता ने कसर नहीं छोड़ रखी, ये सत्संग ने सुनते रहियो। ये थोड़े दिन की रजा है, घड़ी नहीं हुआ करती, कार्ड में सुन दे नहीं आप अच्छी तरह ठीक से विचार कर बैठ के। कोई बात ना, ये वाणिया रिकॉर्ड हो चुके थे, ये पात्र आपको दिए जाएंगे। रोज दिन भी सुनो और भक्ति करना, और परमात्मा की कृपा से का बेड़ा पार होगा तुम्हारा। नोट कर लेना, सह परिवार सतलोक जाओगे, मालिक आपको मोक्ष दे, आपकी बुद्धि मालिक में दंड करे, स्कंदे लोक की यथार्थता तुम्हारे सामने आंखों के आगे घूमने लग जा, और सतलोक की चाह प्रबल हो जा। जहां हंसा तो हंसा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।